सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
शांति। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस आने पर ये गीत याद आता है, मधुबन के कण कण से तुम्हारी याद आती है। सुना है ना आपने गीत, पहाड़ों वृक्षों पत्तों से यही आवाज आती है। कौन सी आवाज? तुम्हारी याद आती है। ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि जब इस शरीर की आयु 6 वर्ष की थी और हम बाबा से मिले, बाबा से मिलने से पहले दिल्ली में बहनों से मिले, पहला दिन मुझे याद है जब हम सेवा केंद्र पर पहुंचे, सफेद वस्त्रधारी बहनों को देखा, उन्होंने हमारे मन को खींच लिया। अपने हैं, अपने हैं, ये महसूस हुआ ये हमारे हैं। और रोज आना जो क्लास करने लगे, शुरू शुरू में पहले दिन एक दादी हमको मिली थी और उसने हमको डांस सिखाया। पहला दिन किस गीत पे डांस सिखाया? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये गीत बजाया, रिकॉर्ड बजाया और इस पर मुझे डांस सिखाया और कहा रोज आना डांस सिखाएंगे। मैं रोज डांस सीखने जाती थी और रोज मुझे आत्मा का पाठ बाबा की याद रोज सिखाती थी। मैं ऐसे खींचकर जाती थी जैसे पुरुषार्थ से नहीं, मुझे बाबा खींच रहा था। और जब पहली बार हम मधुबन आए तो ये पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में आए, बाबा और मम्मा से मिले। बाबा की दृष्टि कितनी रूहानी, डायरेक्ट आत्मा को देखता था बाबा, शरीर को नहीं देखा। ये बच्ची छोटी सी 6-7 वर्ष की है, ये नहीं देखा, डायरेक्ट आत्मा को देखा। क्या कहा बाबा के पहले महावाक्य थे, ये बच्ची इस यज्ञ से गई है और फिर आई है। बाबा मेरा है और बाबा को देखने से नशा चढ़ता था। नहीं मालूम था उस समय इतना शिव बाबा क्या है, लेकिन बाबा तो दिखाई देता था सामने। इतना अंदर में नशा चढ़ता था कि ये बाबा मेरा है, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। बस मैं इस बाबा की होके रहूं, बाबा की आज्ञा पर चलूं, बाबा जो कहे वही करूं, ये अंदर में एक आश उत्पन्न हुई। बाबा पर फिदा हो गए, न्योछावर हो गए, बाबा के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं था, ये बाबा का जादू था, ये बाबा का आकर्षण था। हम जब से बाबा के बने आज तक इसी बाबा के प्यार की डोरी से बाबा के वरदानों से आ रहे हैं। कभी मन में क्वेश्चन नहीं उठा ब्रह्मा कुमारी बनूं या ना बनूं। जैसे आजकल जो बच्चियां आती हैं कितना सोचती हैं, अपना फ्यूचर सोचती हैं, आज कदम रखा कल क्या होगा। हमारे पास प्रश्न ही नहीं था, हम बाबा के ही हैं, बाबा के ही थे और बाबा कई होकर के रहने में कोई प्रश्न ही नहीं। ये थी बाबा की पावर, ये थी बाबा की शक्ति। बाबा जब हम बहुत छोटी थी तो बाबा कहते थे बच्ची सारा दिन में किसी समय भी तुम बाबा के पास आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। और हम सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा के आजू बाजू ही घूमते रहते थे। बाबा किसी से भी बात कर रहे हैं हम पास में बैठे रहते थे। आज तो दादियों से मिलने के लिए भी पूछना पड़ता है, लेकिन बाबा के पास जाने में किसी से पूछना नहीं पड़ता था। बाबा कहते थे आओ आओ बैठो, यहां बैठी रहो। इतना समीप बाबा ने बिठाया और इतना समीपता की अनुभूति कराई। सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक ये आंखें किसको देखती थी, सिर्फ बाबा को। सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करने जाते थे बाबा के कमरे में, फिर मुरली सुनते थे। मुरली सुनने के बाद आप सभी ने सुना होगा, मुरली पूरी होती थी और बाबा गेट पर आते थे और सबको मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते थे। दो घंटा हम बाबा के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गए, जहां बाबा बच्चे एकांत में बैठो, बाबा को याद करो, अकेले अकेले होकर के बैठ जाओ, ये अभ्यास कराते थे। जब भी मधुबन में आते थे 15 दिन, 1 मास, 1.5 मास से पहले नहीं जाते थे। इतने दिन बाबा के पास रहते थे और हर रोज 1 घंटा 2 घंटा बाबा के साथ घूमने जाते थे। और वहां से आने के बाद बाबा सब्जी काटने वालों के बीच बैठते थे, वहां भी बाबा के साथ ही बैठते थे। फिर बाबा अनाज साफ करने वालों के पास बैठते थे। फिर बच्चों से पर्सनल मिलते थे। तो जितने भी बच्चे मधुबन में उपस्थित रहते थे उनकी आंखें सारा दिन एक बाबा पर टिकी रहती थी, जहां बाबा है वहां सभी। इस तरह से बाबा ने बच्चों को कितना अपना साथ दिया और बार बार याद दिलाया, बच्चे बाबा याद है, मेरी ईश्वरी पालना अमृतसर में चंद्रमणि दादी के पास हुई। चंद्रमणि दादी ने हमको बहुत बहुत प्यार से पालना दी। जानकी दादी पहले वहां थी, फिर चंद्रमणि दादी आई, बहुत दादियों की पालना भी मिली। फिर बाबा को हर एक बच्चे पर कितनी नजर है ये हम नहीं जानते थे। हम छोटे से थे, हमें नहीं मालूम था कि बाबा की हम पर दृष्टि है। एक बार मधुबन में बगीचे में झोपड़ी के आगे बाबा चक्कर लगा रहे थे अकेले, और हमें जो बाबा ने कहा था बच्ची कभी भी आ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये एक ताकत थी हमारे पास। हमने देखा बाबा अकेले चक्कर लगा रहे हैं, हम बाबा के पास चले गए। बाबा 2-3 मिनट मुझे दृष्टि दिए और दृष्टि देने के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कह नहीं। बाबा तुम्हें बॉम्बे भेजेगा। और वहां दादी थी, दादी प्रकाशमणि वहां थी, बाबा दादी को लिख देगा तुमको खूब बॉम्बे घुमाए, फिर कोई के साथ चली आना। बाबा ने मुझे बॉम्बे सेवा पर भेजा। लेकिन जाने से पहले उस सुप्रीम टीचर एक एक को टीचर बनाता है। बाबा ने स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, बाबा ने एक एक को टीचर बनाया और फिर टीचर्स को ट्रेनिंग दिया। उस समय मम्मा अव्यक्त हुई थी, ये 65 की बात है, और बाबा ने सुबह जो मुरली चली वो रक्षाबंधन के टॉपिक पर पूरी मुरली थी, और ऐसे सबसे आगे लाइन में मैं बैठी थी। बाबा ने मुझे देखकर कहा, बच्ची आज जो बाबा मुरली चलाई है इसको एक लेख की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। 8 बजे ये बाबा ने मुझे कहा, मुरली खत्म होने के टाइम, एक घंटे का टाइम था मेरे पास, मैं एकांत में जाकर बैठी और 2 पेज मैंने भाषण की तरह रक्षाबंधन पर जो कुछ बाबा ने समझाया वो सारा लिखा। 10 बजे मैं बाबा के रूम में पहुंची। बाबा ने कहा, बच्ची लिख कर आई हो? जी बाबा। कहा अच्छा सुनाओ, पढ़कर सुनाओ। मैंने जो लेख लिखा वो मैंने बाबा को पढ़कर सुनाया। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी बाबा के आशीर्वाद मुझे मिल रहे थे। बच्ची तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम किसी को बहुत अच्छा समझा सकती हो, ये तुमने खुद लिखा है या किसे पूछकर लिखा है? मेरी 2-4 लाइन के बाद बाबा का एक वरदान मुझे मिलता गया। उसके बाद कोई दादी बाबा के पास बैठी थी, दादी ब्रिज शांता बैठी थी, उसको बाबा ने कहा कि ये सिंधी में लिखो और बाबा के टेबल पर रखना, बाबा अमृत वेले इसको पढ़ेंगे। देखो टीचर कैसे बाबा ने मेहनत की है, एक एक बच्चे को बाबा ने खुद बनाया है, खुद तैयार किया है, टीचर ने टीचर बनाया है। बाबा ने अमृत वेले उस लेख को पढ़ा और फिर क्लास में दूसरे दिन भी रक्षाबंधन पर ही मुरली चली। फिर बाबा ने कहा आज जो बाबा ने समझाया वो इसमें ऐड करके 10 बजे बाबा के रूम में आना। मैंने फिर 1.5 पेज और लिखा और बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंची। फिर बाबा ने कहा कल और आज का दोनों सुनाओ। फिर मैं बाबा को पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम्हें भाषण करना। रात्रि क्लास में मैंने उस टॉपिक पर भाषण किया और उसके बाद मेरे को बाबा ने बॉम्बे भेजा। जहां मैं गई सबके पास वो समाचार मिल गया था कि बाबा ने रानी को रक्षाबंधन पर भाषण करना सिखाया है। मैं जहां गई सबको मालूम था और जहां भी पहुंची उन्होंने कहा उसी टॉपिक पर भाषण करो। और रक्षाबंधन के दिन मैं पूना में थी तो जानकी दादी वहां थी, उन्होंने मुझे कहा कि रक्षाबंधन पर तुमको बाबा ने सिखाया है तो रक्षाबंधन के टॉपिक पर बड़े एक हॉल में प्रोग्राम था, तुमको ही भाषण करना है। इस तरह से सेवा करते 1 मास बीत गया। फिर मैंने बाबा से पूछा, मैं तो थोड़े दिन के लिए आई थी, बाबा ने घूमने भेजा था, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे घूमने का बिल्कुल शौक नहीं। शुरू से ही वो बेहद की वैराग वृत्ति नेचुरल आ गई, क्या देखना है। फिर भी मुझे दादी हर जगह भेजती थी, ये यहां घूम के आओ, यहां घूम कर आओ, तो मुझे ऐसा लगता था भगवान मुझे अपनी दुनिया दिखा रहा है, मैं बाबा के साथ खड़ी होकर इस दुनिया को देख रही हूँ, लेकिन मुझे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर बाबा नहीं कहता घूम कर आओ तो मैं घूमने नहीं जाती, लेकिन बाबा की आज्ञा के अनुसार मैं गई। जहां भी देखा बाबा साथ रहा, बाबा की याद रही। फिर बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि तुम बॉम्बे में सेवा करो, बाबा की का नाम बाला करो। फिर मैं वहां दादी के पास एक बरस रही, कुछ क्लाइमेट सूट नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं रही, तो फिर बाबा ने मुझे ईस्टर्न जोन की सेवाओं में भेजा। ये देखा कि बाबा का कितना ध्यान। जब बाबा बॉम्बे में आए, बाबा को पता लग गया था कि मुझे वहां का क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, मुझे दमा हो गया वहां के क्लाइमेट से, और डॉक्टरों ने कहा था वहां का इसको चेंज करो, वहां इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरे रहते वहां बाबा आए, और बाबा ने वहां लिखा था कि कोई भी बाबा को रिसीव करने स्टेशन पर भीड़ नहीं लगे, दो चार आए स्टेशन पर, और ये भी डायरेक्शन था कि उस बिल्डिंग में सातवां तल्ला पर बाबा ठहरे थे, उस बिल्डिंग में नीचे रिसीव करने वाले नहीं रहे, दो तीन ही रहे। ये भी डायरेक्शन था कि लिफ्ट के पास भी भीड़ नहीं रहे, तो हम सबको ये डायरेक्शन था कि सब हॉल में बैठे रहो, बाबा आएंगे सब हॉल में बैठे रहो, बाहर कोई एक भी खड़ा नहीं रहे। तो हम वहां हॉल में सबसे पहली लाइन में बैठी थी, फुल था वो हॉल, वो डबल फ्लैट था, बड़ा हॉल था, बहुत सुंदर दृश्य था। जब बाबा आए, कोई गुलदस्ता फूल माला कुछ भी नहीं था। बाबा आए उस हॉल में, बाबा ने जो प्रवेश किया पीछे से दरवाजा था, सब ऐसे बैठे हैं, बाबा आके हॉल के अंदर खड़े हो गए पीछे, इधर बहने थी इधर भाई थे। बाबा के अंदर आते ही सब उठकर खड़े हो गए, एकदम डेड साइलेंस थी। बाबा ने बोला मालिकम सलाम, सभी ने जवाब दिया सलाम मालिकम। फिर बाबा वहां से चलकर स्टेज पर आए, जब स्टेज पर बाबा बैठे तो पहली नजर मुझ पर पड़ी, मुझे दृष्टि देके झुक के बाबा ने पूछा बच्ची तुम्हारी तबीयत ठीक है। एक एक बच्चे पर कितनी बाबा की नजर है, अभी वतन से भी है, ये हमें महसूस करने की बात है। हम पर कितनी बाबा की नजर है ये हम नहीं जानते, लेकिन बाबा की एक एक बच्चे पर नजर है। टीचर बनाने का कार्य, एक एक बच्चे को संवारा, पावन बनाया, पवित्र बनाया, योगी बनाया, एक एक बच्चे को टीचर बनाया, सेवा के योग्य बनाया। मीठा बाबा, अपने बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनाता रहा। बाबा चाहते थे मेरा एक एक बच्चा बहुत शक्तिशाली हो, अंदर आत्मा बहुत पावरफुल, सर्व शक्तियों से संपन्न हो, अपने पांव पर खड़ा हो, हमारी स्थिति डगमग हो और दूसरे के द्वारा ठीक कराना पड़े, एक ओरिजिनल फाउंडेशन पर हम खड़े रहें, ऐसी शक्ति बाबा ने भरी। एक बार की बात है, बाबा के कमरे में मैं बाबा के सामने बैठी थी नीचे गद्दी पर, और मम्मा की लौकिक माँ रोचा दादी को बाबा ने कोई संदेश दिया था कि जाओ वतन से, बाबा से ये संदेश लेकर आओ, बाबा का वो खास संदेशी थी। तो कोने में एक कुर्सी थी, उस पर बैठी थी, बाबा उसको कोई संदेश दे चुके थे, और जैसे मुझे दरवाजे पर देखा बाबा ने कहा आओ आओ, अपने पास बिठाया और वो ध्यान में चली गई। उसके बाद बाबा ने मेरे से पूछा बच्ची तुम कभी ध्यान में जाती हो, साक्षात्कार करती हो? मैंने कहा नहीं बाबा। तुमको बाबा ध्यान में भेजे जाएगी? जी बाबा। अच्छा, बाबा अभी तुमको भेजता है। ये कहकर बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और दृष्टि भी दी, और साथ साथ बाबा ने अपना हाथ मेरे बाबा की दृष्टि मिली और ये हाथ बाबा का सिर पर रहा। उस हाथों में क्या शक्ति, कौन सी सर्व शक्तियां, सर्व शक्तिवान का हाथ जो मेरे यहाँ रहा कुछ समय तक, मैं एकदम इस शरीर के भान को भूल गई, मैं इस देह से पार चली गई और सूक्ष्म वतन में मैं बाबा को देख रही थी, मैं इस पांच तत्वों से पार चली गई। सूक्ष्म वतन का वो दृश्य मैंने पहली बार देखा, एकदम लाइट हो गई। कितनी देर मैं उस स्थिति में रही ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एकदम बाबा ने मुझको इस देह से पार कर दिया और वहां मैंने वतन में बाबा को देखा और वो सुंदर दृश्य देखा। जब मैं वापस उतरी बाबा मेरे सामने बैठे थे। बाबा के महावाक्य थे, बच्ची ऐसे ही तुम बाबा के पास पहुंचती रहोगी, ऐसे ही तुम नशे में जाती रहोगी, बाबा से मीठी बातें करती रहोगी, कोई भी बात सामने आए ये बाबा के पास जाने की जो शक्ति बाबा ने दी, जो वरदान बाबा ने दिया, वो आज भी हमारे को ऊपर उड़ा ले जाता है। और कितनी बड़ी बात सामने आए हमारा मन और बुद्धि हमेशा याद रहता है कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। इसको बुद्धि को हमेशा लाइट ही रहना है, क्यों? बाबा का हाथ सिर पर है, आज भी वो हाथ सिर पर महसूस होता है, इसलिए बुद्धि कभी भारी हो ही नहीं सकती है। वो पावर, वो शक्ति, आज की बात, आज जो मुझे आवश्यकता है, जो बात मैं बाबा से पूछना चाहती हूँ, वो आज मुझे बाबा से मिलती है। मुझे बाबा के पास जाना और वो बाबा से रू रुहान करना, वो एक सहज अनुभूति बाबा के द्वारा मिली हुई है। ये एक ईश्वरी वरदान जो आज दिन तक हमें यह अनुभव कराता ही रहता है। और एक और बात मैं बाबा की आपको सुनाऊं। जब मैं मधुबन में बाबा के सामने थी, बाबा ने अपना एक विचार दीदी को सुना रहा था। एक सेंटर के लिए बाबा ने कहा, बाबा चाहते इस बच्ची को वहां भेजना। कहां भेजना बाबा चाहते थे? एक सेंटर था, वहां के भाई बहनों में दो ग्रुप हो गया था, डिवाइड, आपस में मतभेद हो गया था, दो ग्रुप बन गए थे। ये तो बाबा को कभी पसंद नहीं है, बच्चों में जरा भी डिसयूनिटी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा इसको वहां भेजता है, ये बच्ची वहां जाएगी, उनको एक कर देगी। मुझे कहा, बच्ची तुम वहां जाना, तुम उनको योग कराना, तुमको बाबा के महावाक्य सुनाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहे, तुमको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बाबा तुमको एक माता देंगे जो तुम्हें भोजन बना के खिलाएगी, तुम्हारा कपड़ा धुलाई करेगी, तुम्हें सफाई करके देगी, सारे काम वो करेगी, तुम सिर्फ मुरली सुनाना और सबको एक कर देना, यूनिटी में सबको ले आना, प्यार से मीठा बोलकर। ये बाबा का एक एक शब्द मेरे को वरदान रूप में मिल गया। मुझे हमेशा याद रहता है, बाबा ने कहा था दो अलग अलग मत वालों को ये एक कर देगी, ये मुझे कभी नहीं भूलता है। जबकि बड़ी दीदी ने मुझे वहां भेजा नहीं, बाबा को कहा, बाबा ये छोटी बच्ची है, शुरू में ही झमेले में फंस जाएगी जाके, मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन बाबा के जो एक एक महावाक्य, बच्चे तुमको सब काम कोई करके देगा, मैं जहां गई मुझे सारी सेवाएं अपने आप मुझे करके मिली, मेरे बिना पुरुषार्थ के, और मुझे बाबा की याद योग करना है, योग कराना है, सेवा करनी है। ये कार्य बाबा ने ऐसा वरदान रूप में दे दिया जो मुझे हमेशा याद रहता है। किस तरीके से सदा यूनिटी में रहना, सदा यूनिटी में रखना, एक लक्ष्य सदा के लिए मिल गया। एक बार की बात और आपको बताती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के कारण, कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं बाबा के पास गई और मेरी आंख से आंसू आ गए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आए? तो कोई कारण नहीं था, किसी ने मुझे कुछ कहा हो, मैं डिस्टर्ब हो गई हो, ऐसी बात नहीं थी। कोई अपनी ही तबीयत का कारण होगा। जब मैं बाबा के पास से चली गई तो दीदी आई मेरे पास, रानी तुमको आंसू क्यों आए? मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फिर और एक दादी आई, रानी तुमको आंसू क्यों आया? तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चों की आंख में आंसू आए। तो जब बाबा ने कहा, दीदी ने कहा, कोई और दादी ने भी मुझे कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई है। और उस समय के जो बाबा के वरदान मिले, बच्ची बाबा को आंख में आंसू आए ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो समय से लेकर मुझे आंख में आंसू कभी आया ही नहीं। कितनी बड़ी बात हो, मेरे को आंख में आंसू नहीं आता है। ये भी बाबा का एक आशीर्वाद मिला हुआ है। कुछ भी हो, अच्छी तरह मन में बैठ गया, समझ में आ गया, बाबा को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने देखा एक एक बच्चे को शक्ति रूप में, बाबा ने देखा एक एक बच्चे को पावरफुल रूप में। वो पावर बाबा एक एक को देना चाहता है। जरा भी कमजोरी का भाव, तन में बीमारी है तो क्या हुआ? मैं आत्मा तो ठीक हूं ना, मैं तो पावरफुल हूं ना, मुझे तो कुछ नहीं है ना। इस प्रकार से ये बाबा की मीठी पालना, ऐसी बाबा की शक्ति हमेशा साथ रहे। ऐसी ऐसी बाबा के अनुभव, हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हमारी स्थिति एक रस रहनी चाहिए। कभी खुश है, कब उदास है, कब नाराज है, कभी अपसेट है, नहीं, स्थिति सदा एक रस रहे, अचल अडोल। बाबा का एक महावाक्य, कुछ भी हुआ, नथिंग न्यू। एक बार कोई किसी की कोई बात बाबा को मैं सुना रही थी, बाबा ने कहा, बच्ची अभी ड्रामा के ज्ञान को समझा नहीं है। तो मैंने दीदी से पूछा कि मैं तो ड्रामा का ज्ञान कितनों को सुनाती हूँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान कितनों को सुनाती हूँ, पर बाबा ने आज कहा अभी ड्रामा का ज्ञान समझा नहीं है। क्यों? अगर समझ लिया है तो कोई क्यों का क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। अगर क्वेश्चन उठता है, माना अभी समझ आई नहीं है, अभी समझ मिली नहीं है, तो हमारे पास थ्योरी नहीं रहे। ज्ञान सुनना अलग बात है, और ज्ञान हुआ, ज्ञान सुना अलग बात है, और ज्ञान हो गया। हमने कईयों की कहानी सुनते हैं ना, फलाने को ज्ञान हो गया, तो एक एक बात का हमें ज्ञान हो गया, हमारे अंदर ज्ञान की जागृति हो गई, हमारी आंखें खुल गई, हमें समझ में आ गई, ये है असली ज्ञान की धारणा। बाबा चाहते थे मेरे बच्चे निर्विघ्न रहे, स्थिति एक रस रहे, अचल और अडोल रहे। जब निश्चय है भगवान हमारा साथी है, जब निश्चय है कि बाबा का हमें हाथ और साथ मिला है, भगवान हमें मिला है, इस धरा पे साक्षात है, हमारे साथ है, हम उनकी परवरिश हमें मिल रही है, उनकी पालना हमें मिल रही है, फिर हमारी अवस्था में हलचल क्यों? ऐसी अचल अवस्था, ऐसी अडोल अवस्था, ऐसी निर्विघ्न अवस्था हमारी रहे, ये बाबा की हम बच्चों के लिए शुभ आशाएं हैं जो हमें पूरी करनी है। मैं समझती हूँ ये 18 जनवरी जो स्मृति दिवस है, ये स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस है। जितनी स्मृति उतनी समर्थि, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य आती, इतनी शक्ति आती है। हमें ऐसा नहीं लगता, बाबा के अव्यक्त हुए 36 वर्ष हो गया है, हमें तो बाबा हमेशा साथ है, बाबा के हाथ में हाथ है। वतन में आना और जाना बाबा ने हर बच्चे को सिखा दिया है, साक्षात्कार की भी बात नहीं है। हमें तो बाबा ने उड़ना सिखाया है, हम अभी अभी एक मिनट के अंदर वतन में पहुंचते हैं, बाबा से मिलते हैं, बातें करते हैं और आते हैं। ये तो लिफ्ट बाबा ने हरेक को दी है, वो पावर हरेक को मिली है, मिली है ना, मिली है ना, हाँ मिली है ना। हम ये कभी नहीं कह सकते हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं है, हमारी तो कुछ सुनने वाला ही नहीं है। कभी कह सकते हैं? कह सकते हैं हमारी दिल लेने वाला, हमारी हर बात सुनने वाला वो दिला राम तो बैठा है हर सेंटर पर। बहने चाहे सेवा में बिजी हो जाए, बाबा तो अपने कमरे में बैठा है, हर बच्चे के लिए बैठा है। हम जब चाहें बाबा से बातें कर सकते हैं, रू रूहान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के मीठे मीठे अनुभव, बाबा के स्मृतियां तो साकार होती जाती हैं, याद आती रहती है। मम्मा के साथ भी बहुत पालना, मम्मा की भी मिली, बाबा की भी मिली। हमने देखा बाबा के बच्चों का तपस्वी रूप बाबा को बहुत पसंद है। बाबा कहते थे भले चलते फिरते बाबा को याद करो, लेकिन बैठो जरूर तपस्या में। बाबा की बैठक तपस्या की कैसी श्रेष्ठ थी, बैठने की क्या आवश्यकता है। बाबा चाहते थे जब तक हमारी निराकारी अवस्था नहीं बनी, जब तक हम शरीर से डिटैच नहीं हुए, हमारी बिंदु रूप अवस्था नहीं आई, तब तक बाबा की याद एकरस नहीं रह सकती। हमें इस देह से वैराग बाबा ने सिखाया है, और वो वैराग का पाठ हमें अपने आप को हमेशा पढ़ाना है। मैं आत्मा हूं, एक चमकता हुआ सितारा यहां मुझे दिखाई दे, ये अपने आप को बारंबार पढ़ाते रहने से हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है। इसलिए पहला फाउंडेशन है निराकारी अवस्था। 18 जनवरी के दिन बाबा के 3 महावाक्य हम सभी ने सुने, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरअहंकारी बनो। हमारी सारी शक्तियां निराकारी अवस्था के अंदर है। हम जो पावरफुल हुए शरीर से डिटैच होने से आत्मा पावरफुल हुई। अगर हम शरीर से डिटैच नहीं होते तो आत्मा पावरफुल नहीं होती, बाबा के समीप नहीं होती। ये देह का भान हमें उड़ने नहीं देता। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, गुब्बारे में गैस भर देते हैं, वो ऊपर 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 उड़ता है। अगर उसको यहां बांध देंगे तो नहीं उड़ सकता। तो आत्मा तो लाइट है, लेकिन शरीर से बंधी हुई है, देह से बंधी है, संबंधियों से बंधी है, संपत्ति से बंधी हुई है, उड़ नहीं सकती। बाबा कहते उसको खोलो। आत्मा को लाइट करने की जरूरत नहीं है, आत्मा तो है ही लाइट। लेकिन जिस चीज को उसने कह दिया ये मैं हूं, ये देह मैं हूं, ये इस देह से आत्मा बंध गई है, इस बंधन को खोल दो। मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो घर परम धाम है, मेरा बाबा वहां बैठा है, मुझे बिंदु रूप में वहां बैठना जरूर है। ये तपस्या, इसको कहते थे तपस्या। इसलिए जब आपने सुना होगा, जब बाबा के सामने जाते, बाबा की दृष्टि पड़ते ही साइलेंस हो जाती थी, डेड साइलेंस, संकल्प भी बंद हो जाते थे। क्या बाबा से पूछने आए हैं भूल जाता था, सारे प्रश्न हल हो जाते थे। तो ये निराकारी अवस्था, इससे बाबा ने हमको पावरफुल बनाया। कहा जब तक तुम्हारी बिंदु रूप अवस्था नहीं बनेगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, निर्विघन नहीं रह सकेंगे। क्योंकि अपने आप को आत्मा बिंदु समझने से हम इस पार्ट से भी डिटैच हो जाते हैं। क्या मेरी जिम्मेवारियां हैं, क्या है, उससे भी डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं आत्मा बिंदु रूप में हूं, बस मैं एक बाबा के सन्मुख हूं। ये निराकारी अवस्था ने निर्विकारी बनाया। देहभान से तो पुराने संस्कार, अनेक विकार उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए माया से युद्ध चलती रहती है। जिसने निराकारी अवस्था बनाने पर फुल अटेंशन दिया, उनकी निर्विकारी अवस्था नेचुरल हो गई। पुरुषार्थ ही नहीं करते निर्विकारी बनने का, उनको संकल्प ही नहीं आते। और तीसरा स्थिति निरअहंकारी, सर्व गुणों का मूल गुण है निरअहंकारी। बाबा में प्रैक्टिकल में देखा। तो ये हम इस स्मृति दिवस पर फिर से इसको याद किया, और हमारा लक्ष्य है कि हम ये दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे निराकारी स्टेज बनानी है और मुझे निर्विघन रहना है, पावरफुल होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।